एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार, कबूल करें संज्ञा का। आज के इस अंक के लिए हमने चुना है साल 1983 की फिल्म एक बार चले आओ का गीत मैं हूँ तेरे लिए तू है मेरे लिए। आयशा भोंसले और नितिन मुकेश की आवाजें, अनजान के बोल और चांद परदेसी का संगीत। फिल्म के गीतकारों के इर्द गिर्द किस तरह के संशय विद्यमान है, कितना जानते हैं हम कम चर्चित संगीतकार चांद परदेसी के बारे में? लोकप्रिय होने के सारे गुणों के होते हुए इस गीत में क्या कमी रह गई? आखिर क्या थी इस फिल्म की कहानी? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रहे हैं शिवम मिश्रा।
बीकानेर के एएसके प्रोडक्शंस के बैनर तले निर्माता अब्दुल सत्तार खान द्वारा निर्मित 1983 की फिल्म एक बार चले आओ के गीत के बहाने आज हम इस अंक में छूने जा रहे हैं इस फिल्म और इनसे जुड़े कुछ अपरिचित कलाकारों से संबंधित अनछुए पहलुओं को। फारुख शेख, दीप्ति नवल, कुलभूषण खरबंदा, गिरीश कर्नाड, काजल किरण और असरानी अभिनीत, इस फिल्म का निर्देशन जगदीश सिदाना ने किया था। अब्दुल सत्तार खान और जगदीश सिदाना दोनों की ही यह पहली फिल्म थी। फिल्म आधारित थी मोहम्मद इकबाल खान की लिखी कहानी पर। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के गीतकारों की। फिल्म की नामावली में पर्दे पर तीन नाम नजर आए। ये तीन नाम हैं अनजान, मोहम्मद इकबाल खान और समीर। जी हाँ, अनजान साहब के सुपुत्र समीर साहब। अब औपचारिक और निर्दिष्ट रूप से यह कह पाना मुश्किल है कि किस गीत को किस गीतकार ने लिखा है। अगर IMDB डाटाबेस में झांके तो कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। आशा भोसले और नितिन मुकेश के गाए आज के प्रस्तुत गीत मैं हूं तेरे लिए के लिए अनजान साहब का नाम दिया गया है, जबकि इसी गीत के नितिन मुकेश के गाए पुरुष एकल संस्करण में तीनों गीतकारों को क्रेडिट दिया गया है, जो सही नहीं जान पड़ता। चिरमी बाबुल की लाडली, धन वालों की दुनिया में बस इतना पहचान है और चढ़ती जवानी मेरी सनम गीतों में इकबाल खान का नाम दिया गया है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस फिल्म का जो सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है वह है फिल्म का शीर्षक गीत। लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत है फिर दिल ने पुकारा है एक बार चले आओ, वो सारे गिले शिकवे गले मिलके मिटा जाओ। काफी हद तक तस्लीम फजली की लिखी और मेहदी हसन की गाई गजल फिर आके चले जाना एक बार चले आओ, सूरत तो दिखा जाओ एक बार चले आओ से प्रेरित फिल्म एक बार चले आओ के शीर्षक गीत के गीतकार का नाम समीर दिया गया है। अब इसमें संशय इस बात का है कि 1983 का साल वह साल था जब अनजान साहब के बेटे समीर ने किसी हिंदी फिल्म में अपना पहला गीत लिखा था। विविध भारती को दिए गए साक्षात्कार में समीर ने 1983 की फिल्म बेखबर के गीत गोरी परेशान है काली परेशान है को अपना पहला हिंदी फिल्मी गीत कहा था। और इसके बाद 1984 की फिल्म अब आएगा मजा में लता जी के गाए लोकप्रिय गीत राजा तेरे रस्ते से हट जाऊंगी को वे सही मायने में अपना पहला गीत मानते हैं। उस साक्षात्कार में समीर जी ने ना तो फिल्म एक बार चले आओ के लता जी के ही गाए इस शीर्षक गीत का जिक्र किया और ना ही इस फिल्म में अपने पिता के साथ काम करने के अनुभव के बारे में कुछ कहा, जबकि उस साक्षात्कार में उन्होंने अपने पिता के साथ अपने रिश्ते की काफी सारी बातें बताई। इसी से यह संशय होता है कि क्या वाकई एक बार चले आओ फिल्म के शीर्षक गीत को समीर ने ही लिखा था। खैर, आज हमने जिस गीत को चुना है उसे तो अनजान साहब ने ही लिखा है। फिल्म एक बार चले आओ के अगले पहलू पर जाने से पहले विविध भारती के उसी साक्षात्कार का एक अंश पेश करते हैं जिसमें समीर साहब ने अपने गीतकार होने के पीछे अपने पिता के प्रभाव का जिक्र किया था, क्योंकि इस फिल्म में दोनों का योगदान है। इसलिए आज के इस अंक से बेहतर भला और कौन सा अंक होगा जिसमें समीर साहब की उन बातों का जिक्र किया जा सके। समीर साहब के शब्दों में, आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। अगर मैं उनका बेटा नहीं होता तो शायद मैं एक गीतकार नहीं होता, मैं एक शायर नहीं होता। ये पोएट्री, ये शायरी, ये लिखने की कला उनके खून से ही मेरे अंदर आई है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा। वो उस समय बंबई में थे और मैं बनारस में रहता था। मैं रेडियो पर आनंद बख्शी, मजरूह सुल्तानपुरी आदि गीतकारों के गीत सुनता था। ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो, देखो दिल ना तोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी। जब मैंने यह गाना सुना तो मुझे लगा कि यह भी कोई गीत है, ऐसा गीत लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यहां पहुंचने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि लेखन कौशल ईश्वर प्रदत्त हो सकता है, लेकिन तकनीकी चीजें सीखनी पड़ती हैं जो मैंने अपने पिता से सीखी हैं। एक फिल्म गीतकार को स्थिति, धुन, मनोदशा और पात्रों के व्यक्तित्व आदि जैसी कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पिता मेरे शिक्षक और मेरे मित्र भी थे। मुझे खुशी है कि उन्होंने निधन से पहले मेरी सफलता देखी। हर पिता अपने बेटे की सफलता देखना चाहता है, वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। आइए अब बात करते हैं फिल्म एक बार चले आओ के संगीतकार चांद परदेसी की। एक बेहद कम चर्चित संगीतकार जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ऐसे कई संगीतकार हुए हैं जो अत्यंत गुणी होते हुए भी सफल नहीं हो सके। उत्कृष्ट काम करने के बावजूद ना किसी ने उनका सम्मान किया ना ही उन्हें आगे काम दिया। 1960 में जब परदेसी ने अपनी पहली फिल्म बंजारन में लता मंगेशकर और मुकेश से चंदा रे मोरी पतिया ले जा गवाकर सभी को चमत्कृत कर दिया था, तब शायद उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें इंडस्ट्री में ब्रेक मिल गया है, लेकिन वे गलत थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए गुजर गया। परदेसी ने आगे चलकर चांद परदेसी के नाम से भी संगीत दिया, लेकिन उनकी किस्मत नहीं बदली। उन्होंने कुल 8 हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। ये हैं 60 के दशक की 2 फिल्में बंजारन और खुफिया महल, 70 के दशक की 3 फिल्में परिवर्तन, कितने दूर कितने पास और बनमानुष, तथा 80 के दशक की 3 फिल्में ये कैसा नशा है, भाई आखिर भाई होता है, और उनके संगीत से सजी अंतिम फिल्म थी एक बार चले आओ। इस फिल्म के बाद फिर कभी उन्हें किसी फिल्म में बतौर संगीतकार संगीत देने का मौका नहीं मिला। वे उपार्जन के लिए एक हारमोनियम वादक के रूप में कार्य करते रहे। अनजान और चांद परदेसी ने साथ में केवल इसी एक फिल्म में काम किया था। आशा भोसले और नितिन मुकेश का गाया मैं हूं तेरे लिए तू है मेरे लिए गीत एक कर्णप्रिय रचना है। बोल, धुन और गायन की दृष्टि से यह गीत उस दौर के अन्य तमाम गीतों से किसी तरह कम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस गीत की व्यावसायिक असफलता का कारण एक तो छोटी बजट की फिल्म का होना है और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कम बजट की वजह से ऑर्केस्ट्रेशन का पक्ष जरा कमजोर रह गया। उस दौर में जहां लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, राहुल देव बर्मन, बप्पी लहड़ी जैसे संगीतकार धमाकेदार संगीत दे रहे थे, वहीं छोटे निर्माताओं और संगीतकारों की उतनी क्षमता नहीं होती थी भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम करे। इस तरह के युगल गीतों में वाद्यों और ऑर्केस्ट्रेशन कायापलट कर सकते हैं। सीमित साधनों और आर्थिक दायरों में बंद कर जितना अच्छा काम हो सका चांद परदेसी ने कर दिखाया। गीत का मुखड़ा मेरी तकदीर तू, तेरी तकदीर मैं हूं तेरे लिए तू है मेरे लिए, होके तुझसे जुदा जी सकूंगी ना मैं, होके मुझसे जुदा तू भी कैसे जिए, मैं हूं तेरे लिए तू है मेरे लिए, फिल्म की कहानी के एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करता है। कहानी पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि फिल्म के नायक नायिका फारूख शेख और दीप्ति नवल इस फिल्म से पहले ही एक हिट जोड़ी बन चुके थे। 1981 में चश्मे बद्दूर, 1982 में साथ साथ और 1983 में तो 4-4 फिल्मों में दोनों साथ नजर आए। एक बार चले आओ के अलावा रंग बिरंगी, किसी से ना कहना और कथा जैसी फिल्मों की वजह से फारूख दीप्ति की जोड़ी एक कामयाब जोड़ी बन गई। इस युगल गीत से पहले भी इस जोड़ी पर एक आध युगल गीत फिल्माए गए थे। फिल्म चश्मे बद्दूर के दो हिट गीत कहां से आए बदरा और काली घोड़ी द्वार खड़ी में भले फारूक शेख दिखाई ना दिए हों, इसी फिल्म का एक कम चर्चित डुएट रहा इस नदी को मेरा आईना, जो फारूक दीप्ति पर फिल्माया गया था और जिसे गाया था शैलेंद्र सिंह और हेमंती शुक्ला ने। फिल्म साथ साथ में तीन युगल गीत इस जोड़ी पर फिल्माए गए थे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के गाए ये गीत थे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये तेरा घर ये मेरा घर और यह बता दे मुझे जिंदगी। इन दो फिल्मों के बाद जब एक बार चले आओ के युगल गीत में फारूक शेख और दीप्ति नवल के लिए प्लेबैक सिंगर्स चुनने की बारी आई, तब शैलेंद्र सिंह या जगजीत सिंह के बजाय नितिन मुकेश को चुना गया, जो फिल्म नूरी में फारूक शेख का पूरी सफलता के साथ प्लेबैक कर चुके थे। उधर दीप्ति नवल के कई गाने आशा भोसले गा चुकी थी, इसलिए आशा जी का चुनाव स्वाभाविक था। हाँ, वैसे यह बात भी जरूर है कि एक बार चले आओ एक कम बजट की फिल्म होने की वजह से निर्माता के लिए सभी गीत लता मंगेशकर से गवाना संभव नहीं था, इसलिए केवल फिल्म के शीर्षक गीत को लता जी से गवाकर बाकी सभी गीत आशा जी से गवाया गया। और अब एक नजर एक बार चले आओ की कहानी पर। फिल्म शुरू होती है धर्मदास के बहन के विवाह मंडप से। दूल्हा दीनदयाल विवाह से इनकार कर देता है क्योंकि उनकी मांगी हुई दहेज की रकम उसे नहीं मिली। धर्मदास की भूमिका में कुलभूषण खरबंदा और दीनदयाल की भूमिका में गिरीश कर्नाड। धर्मदास की बहन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्महत्या कर लेती है। अपनी बेटी की मौत को उसका पिता नारायण दास सह नहीं पाता और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। नारायण दास के किरदार में वरिष्ठ अभिनेता भारत भूषण नजर आए थे। धर्मदास अपनी बहन और पिता की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। समय गुजरता चला जाता है। धर्मदास का बेटा कमल और उधर दीनदयाल की बेटी गुलाब, जी हां आप ठीक समझे, फारूक शेख और दीप्ति नवल दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि दोनों के परिवारों के बीच बरसों पहले क्या कुछ घटा था। जब धर्मदास को इस प्रेम संबंध का पता चलता है तब वो इससे खुश तो नहीं होता, लेकिन दीनदयाल से बदला लेने के लिए इस रिश्ते का फायदा उठाता है। वो शुरू में कमल और गुलाब के विवाह के लिए तैयार हो जाता है लेकिन बाद में मुकर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले उसकी बहन के साथ किया गया था। यहां तक कि कमल और गुलाब को एक दूसरे से अलग करने के लिए खतरनाक तरीकों का भी प्रयोग करता है। गुलाब की जिंदगी तबाह करने की कोशिश भी होती है। उधर दीनदयाल भी कमल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। कमल और गुलाब अपने दुश्मनों से जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनके दुश्मन उन्हीं के आत्मीय जन है। हालांकि प्रिया यानी काजल किरण और मदन यानी असरानी से दोनों को पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत जल्द ही कमल और गुलाब को यह समझ आ जाता है कि इस जन्म में दोनों कभी एक नहीं हो सकेंगे और तब दोनों सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देने का फैसला करते हैं। संयोगवश दोनों उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जहां दशकों पहले कमल की बुआ ने आत्महत्या की थी। क्या रहा होगा कहानी का अंत? क्या कमल और गुलाब भी खत्म हो जाएंगे या कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? ये आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन जितनी कहानी हमने आपको सुनाई उसे सुनकर आपको इस फिल्म की कहानी के साथ कयामत से कयामत तक इश्कजादे फिल्मों की कहानियों में समानता जरूर महसूस हुई होगी, है ना?
तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से संबंधित रोचक बातों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।